लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कलीसिया के सदस्यों द्वारा दुराचार को सहन किया। हमारी अर्थ याचना है कि कलीसिया के भीतर ही वे अपनी पीड़ा का समाधान ढूंढ सकें तथा शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेट्रस महागेट चक्र के प्रांगण में रविवार 26 मार्च को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने सुसमाचार पाठ से लाजरुस के जी उठने की घटना पर चिंतन करते हुए विश्वासों को संबोधित किया। संत पापा ने कहा,
करी फ्रातेल्ली ए सोरेल्ले बोंजोर्नो,
प्रिय भाइयों एवं बहनों सुप्रभात।
ओजी मा ला क्विंटा डोमेनिका दी क्वारेसिमा इवांजेलो सी प्रेसेंटा ला रेसुरेक्शने दी लाजरुस।
आज 40 काल का पांचवा रविवार सुसमाचार पाठ लाजरुस के जी उठने को प्रस्तुत करता है। यह यीशु का अंतिम चमत्कार है जो पास्का के पहले घटित हुआ था। अतः कह सकते हैं कि हम उनके चमत्कार की पराकाष्ठा में हैं। लाजरुस यीशु का एक अच्छा दोस्त था। यीशु जानते हैं कि वह मरने वाला है। वे उनके पास जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उसकी दफन के 4 बाद उसके घर पहुंचते हैं, जब पूरी आशा समाप्त हो चुकी थी। फिर भी उनकी उपस्थिति मर्था और मरियम के हृदय में थोड़ा विश्वास जगाती है, और दर्द में भी वे इस प्रकाश से जुड़ते हैं। यीशु उन्हें विश्वास के लिए आमंत्रित करते हैं और कब्र को खोलने के लिए कहते हैं। उसके बाद वे पिता से प्रार्थना करते और लाजरुस को पुकार कर कहते हैं, बाहर आओ। तब उसमें जान आ जाता है और वह बाहर निकलता है। संत पापा ने कहा, संदेश स्पष्ट है। यीशु अपना जीवन उस समय भी देते हैं जब लगता है कि उम्मीद बिल्कुल नहीं है। कभी कभी निराशा महसूस होती है या ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जिन्होंने आशा खो दी है। एक दर्दनाक नुकसान, एक बीमारी, एक निराशा, एक गलत या धोखे की पीड़ा, एक गंभीर गलती के कारण। कई बार हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। ऐसे समय में जीवन एक बंद कब्र के समान लगता है। सब कुछ अंधकार में सिर्फ पीड़ा और निराशा दिखाई देता है। लेकिन आज यीशु हमसे कहते हैं,
ला फिने नॉन ए क्वेस्टा, कि इन क्वेस्टी मोमेंटी नॉन सियामो सोली,
कि ऐसा नहीं है, उस समय भी हम अकेले नहीं होते, बल्कि वे हमारे साथ और हमारे नजदीक आते हैं कि हमें फिर से जीवन प्रदान करें। वे हमारे साथ रोते हैं, जैसा कि उन्होंने लाजरुस के लिए रोया। सुसमाचार 2 कहता है कि वे व्याकुल हो उठे और रो पड़े। साथ ही यीशु हमें भी निमंत्रण देते हैं कि हम विश्वास करना और आशा बनाए रखना ना छोड़ें, अपने आप पर नकारात्मक भावना को प्रबल होने ना दें। वे हमारी कब्र के पास भी आते और कहते हैं, पत्थर हटा दो। संत पापा ने कहा, यीशु हमसे कहते हैं,
तो ये तेरा पीत्रा,
पत्थर हटा दो। दर्द, गलती, यहाँ तक कि असफलता को भी हम अपने अंदर एक अंधेरे और एकाकीपन के कमरे को छिपा कर ना रखें। पत्थर हटाएं, अंदर जो भी है उसे बाहर निकालें, बिना डर के उसे मेरे लिए दें, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम में पुनः जीवन आ जाए। लाजरुस के समान यीशु हम प्रत्येक से कहते हैं, बाहर निकलो, उठो, अपनी यात्रा फिर शुरू करो, पुनः साहस करो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले चलूंगा, उसी तरह जिस तरह तुमने एक बच्चे के रूप में अपना पहला कदम लेना सीखा। उस पट्टी को हटा दो जो तुम्हें बांधे रखते हैं, निराशा को स्थान ना दो जो उदास कर देता है, उस भय को जो अकेला कर देता है, बुरे अनुभव को जो निरुत्साह करता है क्योंकि डर लकवाग्रस्त कर देता है। यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें मुक्त और जीवित कर देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ता और तुम्हारे साथ रहता हूँ। दर्द के पिंजरे में अपने आप को बंद ना करें, आशा को मरने ना दें और पुनः जीवन प्राप्त करें। संत पापा ने कहा कि यह सुसमाचार पाठ हमारे लिए बहुत अच्छा है, यह जीवन का संगीत है।
Forse anche noi in questo momento portiamo nel cuore qualche peso.
अगर इस समय यदि हम अपने हृदय में कुछ भार या पीड़ा लेकर चल रहे हैं जो हमें कुचल देने के समान लगता है, तो अभी भी वक्त है कि हम पत्थर हटा दें और यीशु से मुलाकात करने के लिए बाहर निकलें जो हमारे निकट हैं। क्या हम अपना हृदय उनके लिए खोल सकते हैं और अपनी चिंताओं को उन्हें सौंप सकते हैं? समस्या की कब्र को खोलें और सीमा से परे उनकी ज्योति को देखें। और दूसरी ओर ईश्वर के प्रेम के दर्पण के रूप में हम जहाँ जीते हैं उसे क्या रोशनी प्रदान करते हैं? क्या हम आशा और यीशु के आनंद का साक्ष्य देते हैं? तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करते हुए कहा, कुंवारी मरियम आशा की माता, हम में अकेला महसूस न करने की खुशी को नवीकृत करे और हमारे चारों ओर के अंधेरे को प्रकाश में लाने का आह्वान करे। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini, nunciavit Mariae,
et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
आमें।
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने यूक्रेन, तुर्की, सीरिया और मिसिसिपी के पीड़ित लोगों की याद की एवं उनके लिए प्रार्थना अर्पित की। उन्होंने पेरू में शांति और मेल मिलाप के लिए भी प्रार्थना की। 25 मार्च को प्रभु के शरीर धारण के संदेश महापर्व के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने माता मरियम के निष्कलंक हृदय को शांति के लिए पुनः अर्पित किया। उन्होंने कहा, कल प्रभु के शरीर धारण के संदेश महापर्व के अवसर पर हमने निष्कलंक माता मरियम के प्रति अपने समर्पण को पुनः नवीकृत किया, इस विश्वास के साथ कि सिर्फ हृदय परिवर्तन से ही शांति का रास्ता खुल सकता है। हम शहीद यूक्रेनी लोगों के लिए प्रार्थना जारी रखें। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप जिसमें करीब 50,000 लोग मौत के शिकार हो गए, संत पापा ने उन्हें नहीं भूलने को कहा। उनकी मदद हेतु रविवार को इटली की सभी पल्लियों में विशेष दान संग्रह किया गया। संत पापा ने कहा, हम तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों के नजदीक हैं। इसके बाद संत पापा ने अमेरिका के मिसिसिपी के लोगों के लिए भी प्रार्थना की जो विनाशकारी तूफान की तबाही झेल रहे हैं। उन्होंने कहा, हम मिसिसिपी के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विनाशकारी तूफान से प्रभावित हैं। तूफान में अनुमानतः 26 लोग मारे गए हैं और व्यापक क्षति हुई है। इसके बाद संत पेत्रस महागिरजाघर के प्रांगण में उपस्थित विश्वासियों को संबोधित करते हुए संत पापा ने पेरू के तीर्थयात्रियों की याद की जहां उन्होंने शांति और मेल मिलाप के लिए प्रार्थना की और सभी को इसमें शामिल होने के लिए कहा, यह कहते हुए कि देश बहुत अधिक पीड़ित है। तत्पश्चात संत पापा ने देश विदेश से आए सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का अभिवादन किया और अंत में उन्होंने अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
A tutti auguro una buona domenica. Buon pranzo e arrivederci.
Okay. बेटे तू सुन मेरे बेटे तू सुन मुझसे दूर क्यों रहता है ए बेटे तू सुन मेरे बेटे तू सुन मुझसे दूर क्यों रहता है तेरे लिए मैंने जान दी लहू बहा दिया कि तुझको जीवन मिले कि तुझको जीवन
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। सोमवार 27 मार्च को संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के कोंचिस्तोरो सभागार में मिनर्वा संवाद के प्रतिभागियों के साथ मुलाकात की, जो संस्कृति और शिक्षा विभाग द्वारा प्रोत्साहित अपनी वार्षिक बैठक के लिए रोम आए हुए हैं। संत पापा ने उनसे मिलने की खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी सभा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव के अध्ययन और अधिक जागरूकता, डिजिटल प्रौद्योगिकियों की विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी की दुनिया के विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, व्यापारिक नेताओं, वकीलों और दार्शनिकों एवं कलीसिया के प्रतिनिधियों, जिज्ञासु अधिकारियों, धर्मशास्त्रियों और नैतिकतावादियों को एक साथ लाती है। संत पापा ने कहा, आपकी उपस्थिति इन तकनीकों के उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग पर एक गंभीर और समावेशी वैश्विक चर्चा, धार्मिक मूल्यों के लिए खुली चर्चा सुनिश्चित करने की आपकी प्रतिबद्धता का संकेत है। मुझे विश्वास है कि विश्वासियों और गैर विश्वासियों के बीच नैतिकता, विज्ञान और कला के मूलभूत प्रश्नों पर और जीवन के अर्थ की खोज पर संवाद शांति और समग्र मानव विकास का मार्ग है। प्रौद्योगिकी हमारे मानव परिवार के लिए बेहद फायदेमंद है और रहेगी। उदाहरण के लिए हम चिकित्सा, इंजीनियरिंग और संचार के क्षेत्रों में हुई अनगिनत प्रगति के बारे में सोचते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक लाभों को स्वीकार करते हुए हम उन्हें मनुष्यों की रचनात्मकता और ईश्वर के रचनात्मक कार्यों में जिम्मेदारी से भाग लेने के लिए उनकी बुलाहट की महानता के प्रमाण के रूप में भी देखते हैं। इस दृष्टिकोण से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के विकास में मानवता के भविष्य के लिए सकारात्मकता तरीके से योगदान करने की क्षमता है। इस क्षमता का एहसास तभी होगा जब इन तकनीकों को विकसित करने वालों की ओर से नैतिक और जिम्मेदारी के कार्यों के लिए निरंतर और लगातार प्रतिबद्धता होगी। आगे संत पापा ने कहा कि यह जानकर सुकून मिलता है कि इन क्षेत्रों में बहुत से लोग यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि प्रौद्योगिकी मानव केंद्रित, नैतिक रूप से आधारित और अच्छे की ओर निर्देशित रहे। संत पापा ने कहा, सच्ची आम सहमति केवल एक समावेशी संवाद के परिणाम हो सकती है, जिसमें व्यक्ति एक साथ सत्य की खोज करते हैं। यह संभव है अगर एक साझा विश्वास है कि मनुष्य और समाज की प्रकृति में निहित हमारे विकास और अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कुछ बुनियादी संरचनाएं मौजूद हैं। इसलिए मैं आपको अपने विचार विमर्श में उभरती प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन में प्रत्येक मनुष्य और महिला की आंतरिक गरिमा को प्रमुख मानदंड बनाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। ये नैतिक रूप से सही साबित होंगे और मानव गरिमा का सम्मान करने में मदद करेंगे और मानव जीवन के हर स्तर पर इसकी अभिव्यक्ति को बढ़ाएंगे। और संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के कंचिस्तोरो सभागार में इटली कालाब्रिया के धर्माध्यक्षों, वरिष्ठों, प्रशिक्षकों, कार्यकर्ताओं और सेमिनारियों के साथ मुलाकात की। संत पापा ने कालाब्रिया धर्माध्यक्ष कॉन्फ्रेंस को धन्यवाद दिया जिन्होंने सेमिनारियों के साथ में रोम की तीर्थ यात्रा की है। संत पापा ने सेमिनरी के रेक्टरों, आध्यात्मिक सलाहकारों, प्रशिक्षकों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया जिन्हें सेमिनारियों के प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है जिसके लिए संगत और विवेक के दैनिक प्रयास की आवश्यकता होती है जो कभी कभी छिपे हुए और दर्दनाक होते हैं। संत पापा ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा कि उनकी भूमि कभी कभी पुराने और नए घावों को प्रकाश में लाने वाली खबरों में सामने आती है। वे प्राचीन ग्रीक सभ्यता के बच्चे हैं और आज भी पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले सांस्कृतिक और आध्यात्मिक खजाने को रखते हैं। उनकी भूमि तिरेनियो ए योनेयो समुद्रों के बीच स्थित एक रत्न है और यह आध्यात्मिकता के स्थान के रूप में भी चमकता है जिसमें महत्वपूर्ण तीर्थालयों, मठवासियों और संतों के साथ साथ ग्रीक बेजांटीन समुदाय की उपस्थिति भी शामिल है। संत पापा ने कहा कि इस वर्ष सेमिनारियों की यात्रा संत जोन के सुसमाचार से लिए गए एक पद द्वारा निर्देशित है, वे उनके साथ रहे। यह पहले शिष्यों को संदर्भित करता है जो यीशु का अनुसरण करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि सब कुछ का आधार प्रभु के साथ रहना और उसे हमारी सेवकाई की नींव पर रखना, अन्यथा हम अपने आप से ऊपर की तलाश करेंगे और स्पष्ट रूप से अच्छी चीजों के लिए खुद को समर्पित करते हुए यह हमारे अंदर के खालीपन को भरेगा। कालाब्रिया के ईश सेवक कासियोदोरो इस प्रकार प्रार्थना करते थे, सभी चीजें बर्बाद हो जाती हैं, जो आपकी महिमा के प्यार से दूर हो जाती हैं। आपको प्यार करना, अपने आप को बचाना है, आपको खो देना मरना है। और कैथोलिक कलीसिया चालीसा काल के पांचवें सप्ताह में प्रवेश कर गई है और विश्वासी प्रभु का पास्का मनाने के लिए आध्यात्मिक रूप से तैयारी में लगे हुए हैं। इस काल में संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट कर सभी कैथोलिक विश्वासियों को अपने मन दिल को साफ करने हेतु प्रेरित किया। ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, हमें उस सारी धूल को साफ करने की जरूरत है जिसने हमारे दिलों को मैला कर दिया है। कैसे? प्रार्थना, उपवास, दया के कार्य, यही चालीसा की यात्रा के साधन है। और संत पापा फ्रांसिस ने नाबालिकों एवं कमजोर वयस्कों के खिलाफ यौन शोषण को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए कलीसिया के मानदंडों के एक अद्यतन संस्करण की घोषणा की। 2019 में शुरू किए गए विभिन्न विधायी सुधारों को सुसंगत बनाया और परम धर्म पीठ द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वासियों के अंतर्राष्ट्रीय संघों के नेताओं को कवर करने के लिए मानदंडों का विस्तार किया। मोटू प्रोप्रियो वोस एस्टिस लुक्स मुंडी, अर्थात आप ही दुनिया की रोशनी है का अद्यतन संस्करण शनिवार 25 मार्च को प्रकाशित किया गया और 30 अप्रैल को लागू होगा। यह मई 2019 में प्रकाशित पिछले संस्करण को प्रतिस्थापित करता है और यौन शोषण के अपराधों के प्रतिरोध करना जारी रखने के लिए कलीसिया की इच्छा की पुष्टि करता है। उधर माटागल्पा के धर्माध्यक्ष रोनाल्डो आल्वारेज, जिन्हें राष्ट्रपति ओर्टेगा के शासन द्वारा 26 साल से अधिक जेल की सजा सुनाई गई, अपने भाइयों विल्मा और मानवेल अंतोनियो से जेल में मुलाकात करने का मौका मिला। दानियल ओर्टेगा के नेतृत्व वाली निकारगुआन सरकार ने शनिवार 25 मार्च को निकारगुआ के धर्माध्यक्ष रोनाल्डो जोस आल्वारेज की तस्वीर जारी की। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।